नमस्ते सत श्री अकाल, मैं अश्मिता बोल रही हूँ। कल्पना सागर में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मोह की पट्टी। आज की कहानी में हम जिक्र करेंगे कि किस तरह आंखों पर बंधी मोह की पट्टी इंसान के सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देती है। तो चलिए हम अपनी कहानी कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं। अशोक एक जिंदा दिल व्यक्ति है। आज व्यापार की दुनिया में उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसने ये मकाम खुद को सूर्य की तरह तपाकर हासिल किया है। आज वो अपनी बालकनी में अपनी पत्नी ऋतु के साथ बैठकर अपने वो पुराने दिनों के किस्से कह रहा है, जब उसके पास रहने को छत भी ना थी। एक अनाथ आश्रम में पलने के बाद होश संभालते ही उसने जिंदगी के कठोर निर्दयी व्यवहार से दोस्ती कर ली थी। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। नियति से दोस्ती होने के साथ ही उसे उसके ताकत और कमजोरी का बखूबी पता था। उसका अकेलापन ही उसकी ताकत बन चुकी थी। इस तरह हर दिन रात अशोक ने मुसीबतों से दोस्ती करने और उन दोस्तों से किनारा करने में लगा दिया। किसी भी तरह के रिश्ते में अशोक का कोई विश्वास नहीं था। समय के साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो किसी डिलीवरी कंपनी में काम करने लगा। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो किसी दिन एक व्यापार का हिस्सा होगा, मगर उसने अपनी मेहनत से वो मकाम हासिल किया जो वो करना चाहता था। आज अपनी बालकनी में खड़े होकर अशोक ने उस ऊंची इमारत की तरफ इशारा करते हुए ऋतु से कहा, वो देखो ऋतु, ये बात बहुत खूब है ना कि आज मैं यहाँ इसके आमने सामने खड़ा हूँ। और ऋतु, तुमने भी तो काफ़ी साथ दिया है मेरा। तुम्हारे साथ ही तो यूं मैं फर्श से अर्श तक का सफ़र तय कर पाया हूँ, नहीं तो आज मैं कहीं ज़मीन पर खड़ा इमारत की ऊंचाइयाँ देख करके खुद की बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहा होता, या इनकी जगमगाहट मुझे रात की अंधेरों की तरह डराती और परेशान करती। कुछ ये सब कहते अशोक अपने घुटनों पर बैठ गया। पास बैठी ऋतु का हाथ थाम कर कहा, ऋतु, तुम्हारा मेरे जीवन में होने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब के साथ कुछ बातों में समय बीता। इसी बीच ऋतु का ध्यान घड़ी पर गया। वो बोली, अरे ये क्या बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। रात के 10:30 बज गए, रोहन अभी तक घर नहीं आया, अशोक ने चिंता जताते हुए कहा। अरे हाँ, कहाँ रह गया? रोहन के सभी दोस्तों को फोन लगाया, रोहन का कहीं पता नहीं चला। इंतजार में रात के 2 बज गए। सुबह जब ऋतु उठी, उसने देखा नशे की हालत में धुत रोहन घर की सीढ़ियों पर पड़ा है। ऋतु ने गुस्से में अपना आपा खो दिया, रोहन की चप्पलों से पिटाई कर दी और उसे कमरे में बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा शोरगुल सुनकर अशोक नीचे आया। ऋतु को समझाते हुए रोहन के पास गया और उसे अपने स्तर पर बहुत समझाया बुझाया। रोहन ने ऐसा फिर कभी ना करने का वादा किया। बात कुछ पुरानी होते ही ऋतु ने अशोक को समझाया, अशोक ये पहली बार तो नहीं, आप उसे डांटते या मारते क्यों नहीं, इतना मोह अच्छा नहीं है। अशोक ने कहा, समझ जाएगा, मेरे बात सब कुछ उसी का तो है, मेरी तरह वो अनाथ तो नहीं है ना। ठीक है, समझ जाएगा, मगर मेरी बात तो समझिए, कुछ फिक्र के अंदाज में ऋतु ने कहा। ऋतु, सभी एक जैसा नहीं सोचते, हर उम्र में सोच बदल जाती है, चिंता ना करो। कुछ इन्हीं उठा पटक के साथ अशोक और ऋतु का जीवन चल रहा था। इधर अशोक दिन रात आगे बढ़ने की जतन करता और उसका इकलौता बेटा रोहन उसका गलत इस्तेमाल करता। अब रोहन काफ़ी बड़ा हो गया है, पापा के पैसे उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं करता वो। इधर अशोक पुत्र मोह में अंधा उसके सुधर जाने का इंतज़ार कर रहा है, मगर कहाँ, ऐसा कहाँ होने वाला था। रोहन अब गैर कानूनी तरीके से वस्तुओं की खरीदी बेची करता, जुए में पैसे लगाता और भी न जाने कितने गैर कानूनी काम करता। ऐसे करके उसने पापा अशोक की गाड़ियाँ और बंगले गिरवी रखवा दिए। अशोक को इस बात का पता चला मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने घबरा कर ऋतु को बुलाया और कहा, हमारे पास अब कुछ नहीं रहा ऋतु, सब खत्म हो गया। मुझे माफ़ कर दो ऋतु, मैं जीवन के इस समय में तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। यह कहकर अशोक फर्श पे गिर गया। ऋतु उसे संभालती हुई रुवांसी होकर बोली, इस बात की आशंका मुझे पहले से थी, आपने हमने जहाँ से शुरू किया था आज हम वहीं आकर गिर गए। अशोक ने कहा, ऋतु मुझे ये लग रहा कि हम उससे भी ज़्यादा गिर चुके हैं, अब हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से खड़ा हूँ और आगे बढ़ूँ। ऋतु कुछ यूं लग रहा है मानो सांसें उल्टी चल रही हैं। मैं हमेशा तो नहीं जीत सकता ना ऋतु, ऋतु ने कहा, हम बहुत पहले हार चुके हैं अशोक। इसके बाद कमरे में कुछ सन्नाटा सा हो गया। अशोक का शरीर निस्तेज हो गया और आंखें खुली की खुली रह गईं। परिस्थितियों से हमेशा लड़ने वाला अशोक आज अपने ही बंधन से हार गया था, या कुछ यूं कहें कि उसके ही बंधन ने उसकी हत्या कर दी थी। इधर अशोक के साथ कदम से कदम मिलाकर हर दुख सुख में साथ देने वाली ऋतु ये सब कहाँ सहन कर पाती। कुछ दिनों बाद ऋतु भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो कुछ इस तरह अंत होता है इस कहानी का। हर कहानी का अंत सुखद तो नहीं होता ना, कभी कुछ अधूरापन, कभी कुछ दुख हमें सुकून दे जाता है, कुछ अधूरेपन में एक अलग सी खूबसूरती होती है, वो दुख और सुख दोनों के साथ समा जाता है। तो चलिए हम अपनी कहानी ही ख़त्म करते हैं, हम अगली कहानी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सभी का दिन बहुत शुभ हो।